से जाने भक्ति रस सार से जाने गौरंगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला गौरंगेर हृदय निर्मल भेल तार हृदय निर्मल तार हृदय निर्मल भेल तार जे गौरंगेर नाम ल तार है प्रेम द जे गौरंगेर तारे मुई जाए बलिहारी तारे मुई गौरांग गुण ते जुरे नित्य लीला तारे सुरे से जना भक्ति अधिकारी गौरांग गुण ते झुरे नित्य लीला तार सुरे से जन भक्ति अधिकारी ए गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए गजेन्द्र सुत भास से जाए गजेन्द्र सुत पास श्रीगुण मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमि पास गौर प्रेम रसारणवे से तरंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग राधा गृह बावन से थाको ठाकुरंग बोली डाको गृह बावन से थाको ठाकुरंग बोली डाको नरोत्तम माघे तार संग नरोत्तम माघे तार संग गौरंगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार से जाने भक्ति চতুরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা হৃদয় নির্মল ভেল তার হৃদয় নির্মল হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে তাই গৌর হরিব 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 শ্রী গৌরাঙ্গ দেব কে শ্রী চরণ যুগল হি জিসকা ধন এবং সম্পত্তি হে ওহি ব্যক্তি ভক্তি রস কে সার কো জান সকতা হে জিসকে কানো মে শ্রী গৌরাঙ্গ কি মধুর লীলায় প্রবেশ করতি হে উসকা হৃদয় নির্মল হো জাতা হে জো গৌরাঙ্গ দেব কা নাম লেতা হে উসকে হৃদয় মে ভগবত প্রেম উদিত হো জাতা হে মে এইসে ভক্ত পর বলিহারি জাতা হুঁ জো গৌরাঙ্গ কে গুণো মে রমণ করতা রহতা হো উসকে অন্দর হি শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ কি নিত্য লীলায় স্ফুরিত হতি রহতি হে ওহী ভক্তি কা অধিকারী হে শ্রী গৌরচন্দ্র কে সঙ্গীয় কো নিত্য সিদ্ধ মাননে বালা ব্যক্তি ব্রজেন্দ্র সুত শ্রী কৃষ্ণ কে পাশ উনকে পরম ধাম কো জাতা হে তথা শ্রী গৌর মন্ডল ভূমি কো জো শ্রী চিন্তামণি কে সদৃশ প্রাকৃত মানতা হে ও ব্রজ ভূমি মে বাস করতা হে শ্রী গৌর সুন্দর কে প্রেম রস কি তরঙ্গ মে জো শ্রী গৌর সুন্দর কি প্রেম রস কে তরঙ্গ মে ডুব জাতে হে वह श्री राधा माधव का अंतरंग पार्षद बन जाता है। वह गृह में रहे या वन में रहे, वह गौर सुंदर के प्रेम रस सागर में डूबकर हा गौरांग कहकर पुकारता है, तो नरतमदास ठाकुर उसके संग की आशा करते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर नरतमदास ने वृंदावन वास का, राधा माधव का अंतरंग होने का, भक्ति के अधिकारी होने का, हृदय को निर्मल करने का सबका शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया। पता चल गया ना? हाँ, अगर आप लोग ऐसे कुछ सब चाहते हैं तो दिस इज दी रिक्वायरमेंट। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद অদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ তো আজ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কে মধ্য লীলা কে
अंतिम अध्याय 25वां अध्याय का श्लोक संख्या 278 प्रभु जी ने आदेश किए हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, तो बोर्ड में लिखा है उसको आवृत्ति करने के लिए प्रयास करेंगे।
जे लीला अमृत बिने खाय जदि अन्न पाने, तबे भक्तेर दुर्बल जीवन। जार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने, हासे गाय करे न नर्तन। जे लीला अमृत बिने खाय जदि अन्न पाने, तबे भक्तेर दुर्बल जीवन। इजार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने, हासे गाय करे नर्तन।
जेलीलामृत विने खाय जदि अन्न पाने, तबे भक्तेर दुर्बल जीवन।
अनुवाद। लोग पर्याप्त अन्न खाकर हृष्ट पृष्ट बनते हैं, किंतु जो भक्त केवल सामान्य अन्न खाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आस्वादन नहीं करता, वह धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है और दिव्य पद से नीचे गिर जाता है। किंतु यदि कोई कृष्ण की लीलाओं के अमृत की एक बिंदु भी पी लेता है तो उसके शरीर तथा मन प्रफुल्लित हो उठता है और वह हंसने गाने तथा नाचने लगता है। तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत संक्षेप में लिखे हैं, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संबंधित सारे भक्तों को चाहिए कि जिन ग्रंथों श्री चैतन्य चरितामृत श्रीमद्भागवत भगवद गीता का अनुवाद हो चुका है वे उन सारे ग्रंथों का अध्ययन करें, अन्यथा कुछ समय बाद वे केवल खाएंगे सोएंगे और अपने पद से नीचे गिर जाएंगे। इस तरह हुए दिव्य आनंदमय सनातन जीवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर हाथ से खो देंगे। ओम अज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये से कविराज गोस्वामी के कंक्लूडिंग वर्ष से मतामत है। पूरे मध्य लीला का वर्णन करके अंतिम अध्याय 25वां अध्याय का अंतिम पर्याय में ये श्लोक को लिखते हैं, जिसमें शुरुआत बोलते हैं ये लीला अमृत बिने। इसी से समझना का शुरुआत करना पड़ेगा। ये लीला अमृत बने, जो लीला अमृत के बिना, जो लीला अमृत के बिना अगर उसको छोड़कर दूसरा कोई अन्न खाता है, उस लीला को न खा करके कोई और अन्न सब्जी विटामिन टॉनिक सब खाता है अन्य अन्न पाने, तब क्या होगा रिजल्ट? वीक हो जाएगा, उसका जीवन दुर्बल हो जाएगा। किसका? भक्त का जीवन दुर्बल हो जाएगा। कोई संसारी कर्मी करने वो तो होते हैं, भक्त अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उनका भोजन क्या होना चाहिए, इसके बारे में संकेत करके कहते हैं कि इसका बिना, इस डाइट का बिना दूसरी डाइट से विल बिकम वीक। तबे भक्त रे दुर्बल जीवन, अगर उसको छोड़ करके वो अमृत से एक ड्रॉप भी ले ले, जारा एक बिंदु पाने, दोनों पैर में शुरुआत में जारा मतलब कोई एक नेपथ्य में अज्ञात सार में कुछ बात को कहना चाहते हैं, जे शब्द जब उच्चारण कोई करता है मतलब कोई तो है जिसके बारे में कहना चाहते हैं, किसके बारे में कहना चाहते हैं ये समझना होगा। इसमें संकेत मात्र कहा गया जे लीला अमृत विने, कौन सा लीला भाई, कौन सा लीला अमृत है? और जारा एक बिंदु पाने, किसका बिंदु पान में, किसका एक बिंदु पान करेंगे? उत्फुल्लित तनु मने, एक बिंदु में भी तन मन उत्फुल्लित हो जाए, हंसेंगे गाएंगे नाचेंगे ये सब हो जाएगा। वो चीज है क्या ये नहीं बताए, यहां केवल संकेत किया गया, ये रहस्यमय है। जब कौन लीला, इसके लिए संपूर्ण मध्य लीला, इसी को कहते हैं। आप अगर मध्य लीला का ठीक से अध्ययन करेंगे, प्रभु तो चुन करके बता दिए, सीरियल अगर पढ़ेंगे तो मध्य लीला में वर्णन करते करते 239 नंबर पैर में कबीराज गोस्वामी कहते हैं इहा जे श्रद्धा करी कर ए श्रवण अचिराते पाय से ही चैतन्य चरण। बोले बाकी कुछ खाना पीना नहीं है, बोलते हैं कि जो इस लीला को जब अभी तक वर्णन किया केवल सुन ले, सुन लेने से अचिरात मतलब लेर नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही श्री चैतन्य चरण प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य चरण प्राप्त होने से क्या हो जाएगा, अभी मैंने भजन में गा करके सुनाया गौरांग दुटी पद चरण के पद कहते ना, गौरांग के चरण जुगल, उनको जो अपना प्रपट्टी बना लिया उसी को बैलेंस बनाया, बाकी कोई नगद नहीं है। जिनका संपत्ति केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के गौरांगर दुटी पद जारा धन संपद, जिनका धन भी हुई है संपत्ति भी हुई है, जो इस प्रकार संपत्तिवान है गौरांग की चरण जुगल की संपत्ति से संपत्तिवान है, से जाने भक्ति रस सार, भक्ति का रस के सार का जानकारी तो वही है, बाकी सब तिलक कंठी लेकर घूम रहे हैं, कुछ नहीं जानते। जब तक गौरांग महाप्रभु के चरण द्वय को जो अपना निज संपत्ति नहीं बना पाया, तो भक्ति का रस को वो कौन जानेगा ना ढोंगी। तो ए लीला इसी को इहा जई श्रद्धा करी करे श्रवण, सही जन पाए अनायास से चैतन्य चरण। चैतन्य चरण को तब प्राप्त करना, और तब जाए पाने से भी संपत्ति बनाएगा, तब डिपॉजिट रखेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, मिलेगा तभी। अब उसको कह करके संतुष्टि नहीं हुआ कि मदन लीला को वर्णन किए, 25वां अध्याय वर्णन करके ये भी कह दिए यही उपाय। फिर उसके बाद में शुरू किए उन्होंने, बोलते हैं मध्य लीला करिलु यही दिग दर्शन, छह बच्छर कैला अच्छे गमना गमन। बोले मध्य लीला का ऐसे वर्णन किया, जहां से मध्य लीला का शुरू होता है, जब भगवान गौरांग महाप्रभु के नाम दूसरा नाम से नामित हो जाता है। भगवान जब प्रकट हुए नवदीप में, नवदीप में लीला किए रहे लगभग 24 साल तक। उनके प्रसिद्ध नाम क्या था? करेक्ट, निमाई। निमाई पंडित कहो जो कहो, निमाई के नाम से प्रसिद्ध थे। 26 साल के बाद उनका नाम निमाई हट गया, क्या नाम हुआ? कृष्ण चैतन्य। ये उनका संन्यास करण के समय नामकरण हुआ। वो नाम प्रकट करवाए, वो नाम भी गुरुजी ने ही नहीं दिए, स्वयं इसको नाम प्रकट कराए, श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रकट कराए भगवान ने। ये नाम ही अति अद्भुत अति विशेष है, चैतन्य नाम। आप जब हरिदास निर्व्यास प्रसंग पढ़ेंगे, हरिदास ठाकुर जो साक्षात नाम के आचार्य थे, जिनको महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ दर्शन करने के बाद जगन्नाथ माला जगन्नाथ प्रसाद दे की लेकर के एवरीडे आते थे उनके पास, वो हरिदास ठाकुर का जो अंतिम इच्छा था मरते समय में, उन्होंने जो तीन मांग किए थे, बोले प्रभु मैं जीवन भर आपके दिन रात आपके भजन किया हूं, कुछ नहीं चाहूं, चाहिए कुछ नहीं, लेकिन आज मरना चाहता, मरी रहा हूं इस अवस्था में, एक मेरा मन में आशा जग रहा है। चेतन महाप्रभु रो कर पकड़ ली, बोले हरिदास क्या कहते हैं आप, क्यों मुझे छोड़कर जाना चाहते, इतने निष्ठुर क्यों, मैं पुरी में तो आया, मेरा कोई नहीं है, घर परिवार संपत्ति परिजन सब छोड़कर आया, आपकी वजह से तो हूं, आपके संग लेता हूं, जगन्नाथ के संग में मन नहीं भरता, उनसे हट करके आपके पास आता हूं, आप मुझे छोड़ के चला जाना चाहते हैं, ऐसे निष्ठुर है। हरिदास ठाकुर तो उन्हीं के भक्त थे, कुछ कम नहीं थे। बोले प्रभु एक ट्रक लोड सरसों होगा, कोई किसान होगा जिसको एक ट्रक लोड सरसों लेकर जा रहा था, कई 200 बोरा भरा हुआ है, तो उसमें से कहीं छेद हो गया, एक सरसों का दाना गिर गया, तो किसान रोएगा, गाड़ी रोककर ढूंढेगा उसको। बोले आपके अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत अनंत उच्च कोटि के भक्त भरे पड़े, इसमें से मैं जैसे एक तुच्छ हीन जाति हीन कर्म एक तुच्छात तुच्छ, अगर मैं मर जाऊं आपका क्या हानि होगा, क्या लॉस होगा आपका, व्हाट लॉस विल हैव। एक ट्रकलोड सरसों के दाना से एक राई गिर जाए तो उसके लिए वो सोचेगा ना, गाड़ी खड़ा भी नहीं करेगा, हो जाने तो 2-4 किलो गिर जाने से नहीं देखेगा, एक दाना का क्या। बोले यही से मैं, आपका क्या हो जाएगा, आप क्यों ऐसा कहते हैं। तो भगवान बोले अरे तू पोल खोल देगा, बोले छोड़ो भाई तुम क्या चाहिए बताओ, ठीक है, अरे आप इच्छा करेंगे आपकी इच्छा कृष्ण पूर्ण नहीं करेंगे। बोले कृष्ण का कोई ड्यूटी नहीं होता। बोले आपको तो पता होगा ना, कृष्ण का कुछ कर्म ही न मान कर्माणि लिप्यन्ति न च कर्म फले स्पृहाः, भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं मेरा कोई काम ही नहीं होता, ना कोई काम की इच्छा होता है, याद पारा, न मान कर्माणि लिप्यन्ति न च कर्म फले स्पृहाः इति मां जो अभिजानाति कर्म भी न सबद्यते। बोले वो भी कर्म बंधन नहीं लगेगा जो ही बात को जान लेगा कि भगवान का कुछ कार्य है ही नहीं, ना कोई काम के लिए उनका आशा है, ये बात को जो जान लेगा वो भी कर्म बंधन से बच जाएगा, भगवान कुछ काम नहीं, लेकिन भगवान हमेशा बिजी रहते, ओवर टाइम करते हैं, क्या काम करते, काम करने के लिए है ही नहीं तो क्या काम करते हैं, वो लेके तो काम है उनका, इसी काम में उनका दिन रात बिताते हैं। बोले क्या क्या है? न भक्त वंशा पूर्ण हिनु ना ही आना कर्म। अपने भक्त के इच्छा को पूरा करने के अलावा और कोई प्रोजेक्ट? एक ही प्रोजेक्ट है, इसी में लगे हुए हैं, इसी में दिन रात एक करके लगे हैं, बस एक ही काम है उनको। भक्त वंशा पूर्ण हिनु बिनु ना ही आना कर्म। तो आप जैसे भक्त आप इच्छा करेंगे, अरे कृष्ण तो पूरा करेंगे, ये स्वयं तो बैठे हैं अब करने वाले, वही तो कृष्ण है, करेंगे। बोलो बोलो बोलो, क्या इच्छा है को बोलो बोलो बोलो, बार बार के बोलो। मैं बोलूं बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बोलो बोलो पूरा कर देंगे, बोलो। तब हरिदास ठाकुर बोले, हे प्रभु अब क्या करूं, दुर्बल हो रहा हूं, आप देख रहे हैं लेट गया, अब बैठ करके नाम नहीं हो पा रहा है, तो बस एक ही मेरा अंतिम इच्छा है, आपके होते होते आपके सामने इस शरीर पात हो जाए, मैं शरीर छोड़ के चले जाऊं आपके होते होते आपके सामने। आप लोग तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्जाम है। तो पकड़ बोले ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते? बोले ये तो शरीर छोड़ना, बोले और क्या? नहीं नहीं, शरीर छोड़ने का एक तरीका भी है, हाउ टू लीव माई बॉडी, ये मेरा एक प्रोजेक्शन है, ये प्लानिंग है, इस तरह करना चाहता ना। बोलो क्या तरह करना चाहते हैं? तो वो तीन पॉइंट बताए, बोले मरना इसी प्रकार चाहता हूं। बोले जब मेरे अंतिम श्वास निकलने वाला होगा, मुझे तो पता नहीं लेकिन आपको तो पता होगा, मेरा अंतिम श्वास कब रुक जाएगा, लास्ट ब्रीद कौन सा होगा, ये तो मुझे नहीं पता लेकिन आपको तो पता है ना, बिल्कुल पता है, काउंटिंग कब डिलीट बटन दबाएंगे आपको पता है, जब दबाएंगे डिलीट बटन बंद करने वाले सांस, तब मेरे यही तीन काम करवाना। क्या? नयने देखी मैं तुम्हार चंद्र बदन, सबसे पहला पॉइंट क्या, मैं ये दोनों आंख से जो आंख अपने दिए देखने के लिए और कुछ देखना चाहता हूं, केवल आपके मुख चंद्रमा को दर्शन करना चाहता हूं। नयने देखी मुआ मार चंद्र बदन, मेरे दो आंख में आपके श्री मुखचंद्र को दर्शन करूंगा। और हृदय धरिम तुमार चरण जुगल, हृदय में आपके दो चरणों को पकड़ कर रखूंगा, यही मरा है प्लानिंग, वही कुछ नहीं, मरूंगा तो मरूंगा, मरते समय में आपके दो श्री चरण को ला करके हृदय में धारण करके रखूंगा, आंख में भर भर करके आपके मुखचंद्र के स्वभाव को निहारूंगा। अच्छा, और बोले बस लास्ट पॉइंट और एक, क्या लास्ट पॉइंट? मुख्य उच्चारिबु सदा श्री कृष्ण चैतन्य नाम, ऐ मत इच्छा मोर छाड़ी मु प्राण, बस यही मेरा इच्छा। इस जिह्वा में आपके श्री कृष्ण चैतन्य नाम, इसी नाम को उच्चारण करते रहूंगा, इसी नाम के साथ मेरे प्राण पखेरु निकल जाए, उड़ जाए इसी नाम के साथ। तो हरिदास ठाकुर जिंदगी भर हरे कृष्ण महामंत्र जप किए, अंतिम इच्छा क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य नाम। देखिए ध्यान देने के बाद, जिंदगी भर 24 घंटा हरे कृष्ण करते रहे, अंतिम बोलते हरे कृष्ण नहीं बोलना चाहता हूं, राइट ऑनेशन यस, अरे वही तो होगा, 24 आवर्स इस मंत्र को बोलते ना, उसको नहीं बोलना चाहता हूं, पूरी जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ का दर्शन हो ना, कितने क्या बोले ना, अंतिम इच्छा आचार्य जो नाम के श्री आचार्य हैं वो सिखाते हैं क्या होना चाहिए हमारा लक्ष्य, बस अगर देखना चाहते हो तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखचंद्र को दर्शन। आयत नेत्र आंसू बहता है गंगा जमुना की धारा के जैसा, इस प्रकार के प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु के मुख को निहारो और जीवन के सर्वोच्च संपत्ति भक्ति के सार सर्वस्व श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण जुगल दी प्रेसियस थिंग उसको पकड़ लो, बाकी संपत्ति कोई कितने बैंक बैलेंस करो छोड़ के जाएंगे, ये एक फट्टा नया पैसा चेकबुक कुछ नहीं लेंगे, रोकड़ा नहीं कम से कम चेकबुक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो ले जाओ साथ में, वो भी नहीं लेंगे, जो कपड़ा पहना देंगे उसे पकड़ ही नहीं होगा, लेंगे किसे, जानते ना नहीं। बिगिनिंग में और एंड में जो कपड़ा पहनाते हैं पकड़ लेस कपड़ा, जब वो जन्म होकर में आते संसार में जो कपड़ा पहनाते उसे पकड़ होता है क्या, पकड़ नहीं होता। और अंत में जो छूट जाता है प्राण, जो व्हाइट शीट उठाते हैं उसे पकड़ होता है क्या, नहीं। वो बीच में सब चक्कर चलाते हैं, बिगिनिंग एंड में पकड़ है ही नहीं, ना कोई लेन देन का सवाल है। पकड़ रखने का काम सब बीच में होता है, ऐसे सियाणी बनते हैं हम, दुर्बुद्धि करते हैं, लेकिन इसी समय नहीं, एंड में कोई पकड़ नहीं, बिगिनिंग को पकड़ते हैं। तो इसलिए असली संपत्ति जिसको डिपॉजिट करने से वो आपका साथ में जाएगा, बिना पकेट में कैसे जाएगा, हृदय में जाएगा। उसके लिए कोई कैरियर नहीं चाहिए, बैंक नहीं चाहिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, कैसे जाएगा, हार्ट, हृदय के साथ, आत्मा के साथ वो आत्म वस्तु साथ में जाएगा। ओ हे भगवत शरण कमल, उसी के स्टाम्प यहां लगाओ, वो अंदर से जाएगा। ये है, ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर में चरणों को धरो, सॉफ्टवेयर में पास हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। हृदय धरिमु तुम्हार चरण कमल। और अंतिम इच्छा में ही बोलते हैं कि मैं आपके श्री कृष्ण चैतन्य नाम को उच्चारण करते रहूं। अरे तू जिंदगी भर तो ये नाम नहीं किया, बोले वो मुझे पता है, क्योंकि ये मंत्र दिए थे, ये प्रिस्क्रिप्शन चला था, शुक्र था, लेकिन अभी प्रिस्क्रिप्शन कोटा पूरा हो चुका, अब मुझे वो डोज लेना जरूरत नहीं, अभी जो डोज मैं चाहता हूं वही लूंगा, जो आप भी समझ रहे हैं कि क्या है, ये सुप्रीम डोज है, श्री कृष्ण चैतन्य नाम। श्री सार्वभौम पंडित का जब उद्धार हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया भगवान के पास, वो भी यही बात कहे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुषम पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपम बुधे तुम। बोले आप श्री कृष्ण चैतन्य नाम लेकर आए हैं, वो ही नाम ही संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ नाम है, इस नाम को दूसरा कोई नहीं दिया है, तो स्वयं आपने आप नाम को प्रकट कराए। तो महाप्रभु का चैतन्य नाम जो चैतन्य रूप प्रकट हुए 24 साल के बाद में, और नवदीप छोड़कर पूरी आ गए, मध्य लीला का शुरुआत वहीं से हो रहा है। मध्य लीला के शुरुआत में गौरांग नहीं है, निमाई नहीं है, कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य है, यह है मध्य लीला की कैरेक्टर, वो हीरो है श्री कृष्ण चैतन्य। तो इस मध्य लीला में जो वर्णन किया गया उसको फिर 25 श्लोक में दोबारा बोलते हैं कविराज गोस्वामी, बोले मध्य लीला के में ये सब घटना वर्णन किया, ये अन्य घटना किया, उसको बोल करके ये श्लोक बोलते हैं। इस जो मध्य लीला में जो जो वर्णन किया, जे लीला अमृत बिने खाया जदि अन्न पाने, जे लीला का समझ में आया, कौन लीला, मध्य लीला, मध्य लीला माने केवल मध्य लीला नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य लीला, चैतन्य रूप में जो चरित किए, जो लीला किए चैतन्य के नाम से, उसमें मध्य लीला का सबसे पहले 2 अध्याय में अंत लीला भी वर्णन है, मध्य लीला का जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर वो अंत लीला के वर्णन है, यस सूत्र वर्णन संक्षेप अंत लीला वर्णन की, और उसके बाद में मध्य का चरित्र वर्णन, मतलब श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जब महाप्रभु परिचित हुए तो उसी समय में जो जो लीला किए, ये लीला का एक ड्रॉप चाहिए हमको। अब आप लोग मध्य लीला अंत लीला सुने होंगे, पढ़े होंगे थोड़े बहुत, तो अभी आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, इस मध्य लीला अंत लीला में दी सुपर मोस्ट सबसे फेवराइट अट्रैक्टिव पास्ट टाइम कौन सा आपका है? भाई एक ड्रॉप तो चाहिए, हमें सारा थोड़ी चाहिए, इसमें हाल खराब हो जाएगा, तो कौन सा सबसे आपका दी फेवराइट है? अरे
दीक्षा लिए,
वो तो मध्य लीला में है ही नहीं, ओ आदि लीला में है, गया गमन में है, वो बात चैतन्य चरितामृत में नहीं है, वो चैतन्य भागवत का आदि लीला में है। ये जो लीला बने, जे लीला बत्रो, जो लीला वो कहे, बोले ये लिस्ट में दिया हूं, लिस्ट में कौन सा है, ये सब अपना अपना इंडिविजुअली चॉइस देते हैं, और कोई ड्रॉप आप ले लो, जा रहा एक बिंदु, कौन सा बिंदु आप लेंगे, आप इतने हैं सबका अपना अपना चॉइस है, हो सकता है सबका एक हो, सबका अलग अलग हो, लेकिन कौन सा आपका बिंदु पकड़ नहीं आता आपको, कोई एक बिंदु पे तो जाओ। मध्य लीला में जब शुरुआत हुआ, अब आपको याद नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा संक्षेप में आपको बताता हूं। शुरुआत में पहले दो अध्याय में अंत लीला का सूत्र वर्णन कर लिया कि अंत में ये होगा, सूत्र वर्णन। उसके बाद मध्य लीला का दी बिगिनिंग शुरुआत किए, जिसमें सबसे प्रथम है महाप्रभु के संन्यास ग्रहण। चैतन्य नाम तो संन्यास ग्रहण पढ़ा ना, संन्यास लीला है प्रभु का संन्यास, सुपर मोस्ट पैथेटिक पास टाइम। ऐसे करुण्य लीला, जो सुनेगा जो बोलेगा जो याद करेगा वही रोएगा। कबीराज गोस्वामी वर्णन कहते हैं कि जब महाप्रभु का संन्यास लीला में काटुआ में नवद्वीप में दोनों जागा में क्राइंग फेस्टिवल हो गया, रोने का मेला लग गया। बोले घर परिवार भक्त लोग तो जो रोए, जनरल पब्लिक आए वो रोए, उनको देख करके गाय बछड़े पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे तक रोने लगे। ऐसे शुरुआत की बिगिनिंग में, तो संन्यास लेकर के काटवा ग्राम जाते हैं, वहां संन्यास लेकर फिर वापस आते हैं, आ करके बिगिनिंग में इश्यू किए करके शांतिपुर में मात्र मिलन हुआ। संन्यास लेने के बाद में किसी जगह में बोलते हैं 10-12 दिन के बाद, कि बोलते हैं हफ्ता दिन के बाद, जो भी हो संन्यास लेने के 8-10 दिन के बाद में फिर उनका मां से मिलन हुआ। और वो तो इतने हृदय विदारक सीन है, थोड़ा अंदाज लगाइए। बिगिनिंग में इसे डाला गया उसमें अमृत, महाप्रभु निमाई के नाम से कितने सुंदर कुंचित केश था, कितने सुंदर आकर्षक शरीर था, गोरे चमचमाते हुए शरीर, इतने सुंदर बाल, इतने सुंदर अंग उपांग, कपड़ा लता छोड़कर जा करके सारे बाल मुंडन करवा करके और संन्यास वेश पहन करके दंड धारण करके आ गए। सची माता तो बोलते हैं जब तक निमाय के नहीं देखा तब तक अन्न जल नहीं धारण की थी, खा नहीं रहे थे। 2-4 दिन तो काठ मर गई, कोमा में रही 2-4 दिन। उसके बाद में उठी, रो रो करके गंगा के घाट तक गई, निमाय निमाय कहते हुए, मां के नाम तो निमाय है, वो दूसरा नाम बुला ही नहीं ना, वो निमाय निमाय कह करके गंगा घाट तक रोते रोते गई। जब पता चला इसी घाट में कूद करके तैर करके चला गया, गंगा माँ को प्रणाम करके रो रो के सर पीट पीट कर गंगा को बोले तू इतने निष्ठुर है, इस घाट का नाम पड़ गया निर्दय घाट, तेरा दया ही नहीं, तू इस घाट ही इतना निर्दय, नौका भी नहीं था, तैर के चला गया इस घाट, तू कैसे पार करा। अब उसी दिन से खाना पीना छोड़कर रो रही थी माँ, और पत्नी का तो बात ही क्या कहे, उनका जो हाल था अवर्णनीय है। और बाकी पूरे नवदीप के समस्त भक्तगण, जो भक्त थे अभक्त थे, सब रो रहे थे। कुछ लोग तो डिसाइड किए, बोले चलो और रहने फायदा क्या है, चलो घर में आग लगाते हैं सब, हम भी संन्यास लेकर चले जाए और काहे नगर में रहे, कोई चार नहीं। नित्यांत वो आकर के संभाले सबको, बोले नहीं 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 ऐसा मत करो, मैं पकड़ के लाता हूँ, लाएंगे ना, उनके ऊपर भरोसा था। बोले ये तो ठीक है, अच्छा बोले मैं लेकर आता हूँ वापस, क्यों चिंता कर। तो उनको सांत्वना दिए रखे, फिर गए उनको बुला के लाए, वो नितान पर उनको ट्रिक करके लेकर आए, ला करके शांतिपुर में लाए, बोले देखो और आगे नहीं जाएंगे, यहीं मिलन होगा, बुलाओ पत्नी तो नहीं आएगी, माँ को बुला लो। चंद्रशेखर आचार्य को भेजे और अब तक 4 दिन से आकर के हैं शांतिपुर में, वहीं आकर खाए, फास्टिंग दिन जाने घूम रहे थे, प्रसाद पाए थे, बड़ा मेला फेस्टिवल होता है, हजारों हजारों लोग आदित्य भवन में आकर इकट्ठा हुए थे। चंद्रशेखर आचार्य जो खबर भेजे थे नित्यानंदपुर, जाकर सची माता को बुला लो और उतने देख, अब इस रूप में देखेंगे संन्यास रूप में। अब महाप्रभु बैठे हैं, मेला लगा हुआ समझो, कई हजारों हजारों संख्या में लोग चारों तरफ बैठे हैं, विशाल फील्ड भरा पड़ा है, पंडाल नहीं लगा था, ऐसे ही सहज इकट्ठा हुए हैं। बीच में महाप्रभु बैठे हैं, आदित्याचार्य, सारे भक्तगण बैठे हैं, और कीर्तन आदि नाम कीर्तन चल रहा, हठात चंद्र शंकराचार्य ने सची माता को लेकर के आए। जैसे सची माता आकर के अंधी सभा भवन में सभा स्थल में जहां वहां पहुंची तो माँ तो माँ ही है, इतना दिन से रो रही थी, एक ही तो बेटा था उनका। जब देख दिया अपने बेटा को ऐसे टकला है, मतलब शेप्ड हेड है और इस प्रकार संन्यास बेस में, तो आप अंदाज लगाए उनका कैसा हुआ। रो तो रही थी, उसका भल्ली बढ़ा होगा कि घटा होगा। अब सामने देख लिया इस रूप में है निमाए, अब तो जैसे ब्रस्ट किया साउंड सिस्टम हटा, इतने जोर से चिल्ला करके ले निमाए कह करके मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनको पकड़कर उठाया गया छाट छूट करके, ऐसे अश्रु बदना सची माता को इससे हुआ। सभी जो कई हजार लोग बैठे थे सबका आंख मन चित्त इन्हीं की तरफ चला गए। ओ माता सची आई आए, दी सुपर मोस्ट सीनियर मोस्ट भगवान की मां है। उनको देख करके सभी के नजर मन उन्हीं की ओर चला गया, सब देख रहे हैं, हजारों आंखें उन्हीं की ओर देख रहा है और वो आंखें उनको ओर देख रहा है, होल पब्लिक माता सची की ओर देख रहे हैं, सची माता आंसू बहाते हुए निमाई की ओर देख रहे हैं और निमाई मां को भी देख रहे हैं। हटा दरी मां गया क्या, अब क्या होगा, बिल्कुल रसाभास हो गया, बदल गया हमको, लाद रही है किसान। आप क्लास बंद साइलेंट, हजारों बैठे किसी का मुंह से वचन नहीं फूटा, सब चुपचाप साइलेंट। क्या होगा अभी, क्या करेंगे वो, क्या करेंगे ये, क्या करेंगे माँ, क्या करेगी वो, क्या करेगी, ऑलरेडी एक बार मूर्छित हो चुका है, ऐसे रो रहा है, क्या करेंगे, कैसे मिलेंगी, क्या करेंगी, सब देख रहे हैं उनको, क्या होगा क्या होगा। माता सची ऐसे दशा में आ चुकी थी और पैर चलना नहीं चाहती थी, भीड़ तो था ही लेकिन मां आना चाहती, सब भीड़ छोड़ देंगे, अरे उनके बेटा है भाई छोड़ दो, लेकिन वो तो ही स्टैग्नेंट पोजीशन में खड़े हो गए, केवल रो रही थी। सारे पब्लिक देख रहे क्या होगा, महाप्रभु देखे बोले अच्छा सीन हो गया, सब सबका हालत है, सब चुपचाप को कुछ करने मार हो रहे हैं, मेरे और देख करके सब ऐसे देख रहे हैं। तो साइलेंट ब्रेक किए महाप्रभु, उठकर खड़े हुए, खड़े होकर बोले मां कह करके उनके ओर दौड़ करके गए, दौड़ करके महाप्रभु गए हजार पब्लिक के बीच में, मिलन होगा, अभी मां आया था इतने से मां मिलने के लिए नहीं आ पाया, पुत्र दौड़ करके गया, जा करके धड़ाम करके हम लोग से दंडवत प्रणाम बोलते हैं लेकिन कभी नहीं अभी तक किए ना कर सकते हैं, क्यों, दंडा जैसा दंडवत, दंडा ही जैसा गिरना दंडवत होगा, दंड जैसा, दंडा ऐसे है गिरेगा कभी हाथ लगाएगा धड़ गिरेगा, हम लोग ऐसे गिरेंगे तो सब चकनाचूर हो जाएगा, तो इसलिए हम दंडवत करते हैं, हाथ लगाते हैं थोड़ा देखते हैं मार्बल है कि फर्श है कि क्या है कैसे, मैंने सब नापचुप करके, तो दंडा जैसे गिरी नहीं सकते, तो दंडवत केवल नाम रखा है, कहा है दंडा जैसा गिरेगा तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, उसी दिन जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस खड़ा करो तब दंडवत मारो और क्या आजकल मिट्टी तो है ही नहीं, सब सॉलिड पत्थर मार्बल है, एक बार सेट हो जाएगा ब्लीडिंग हो एक बार दंडवत प्रणाम में हॉस्पिटलाइज और यहां मंदिर धोना पड़ेगा ब्लड निकलेगा तो हम कर ही नहीं सकते दंडवत, हम धात पर लगा करके बैंड हो करके ढंग से करते हैं और नाम बोलते हैं दंडवत, दंडा जैसा नहीं, लेकिन महाप्रभु गए वो दंडवत, वो शांतिपुर गंगा किनारे, वो तो ये भूमि था, नरम भूमि था बिल्कुल, वो तो भगवान कई बार अछाड़ खा के गिरते थे, ऐसे गिरे मां के चरण में, मां के होश उनका जो कुमा स्टेज थी वो निकल गए, बाप रे निमाई आकर मेरे चरण झुक रहे इसे गिर रहा है, हम लोग को देंगे कोई दवाई पानी देंगे कुछ करेंगे होश पा जाए, वो दवाई क्या है, सुपर दवाई है डोज, ऐसे जाकर चरण पकड़े मां मां कह करके उनका बिल्कुल आ गया सेंस में, तुरंत उनको उठा करके गोद में ले ली मां निमाई। बोल नहीं पाती थी, बोलना कुछ चाहती थी, मां गोद में लेकर के अलिंगन करके बोल नहीं पाती थी। नयनम गलदस्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, बोली गला से निकली तभी ना बोला जाए, गला चोक हो गया, आंख से झरझर आंसू बहता था। तो महाप्रभु तो टेक्निशियन, वो बोलना शुरू किए बोले मां ये सभी के सामने, हजारों हजार पब्लिक के सामने मैं कहता हूं, मां सच कहता हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया था, पागल है मां, आपको तो पता है थोड़ा सा पागलपन तो पहले भी था, बाद में मेरी था, मेरा ये जो मैंने ले लिया ना सन्यासी, पागलपन था मेरा, गड़बड़ हो गया मुझसे, गलती में ऐसा कर दिया। तो मां गलती माफ नहीं करेगी, बुरी बाप रे बाप, हृदय को पिघला दिए पानी करके, ऐसे बात कहे, मां के मां तो ही निकल पड़ा। अरे ऐसा कहता है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, हाँ गलती हो गया, मुझे करना नहीं था लेकिन क्या करूं, मिस्टेक हो गई, प्लीज एक्सक्यूज मी, ऐसे बोलने लगे कि मां तो एक बार बारंबार लेकर के क्या बोलूं क्या करूं, इतने हाइडो चढ़ा दिए। फिर बोलने, मां सभी के होल पब्लिक के सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं, ये शरीर का अधिकारी केवल आप है और कोई नहीं, आप मुझे गर्भ में धारण किया, आप मुझे जन्म दिया, आप मुझे लालन पालन किया, मुझे पता है, मैं देखा हूं, कई कई दिन उपवास रहते हुए मेरे लिए खाना जुगाड़ करता था, खुद नहीं खाती थी, खुद पहनती थी नहीं, कितने दुख कितने कष्ट सहन करके मुझे लालन पालन किया, लेकिन मैं इसी अवस्था में छोड़कर चला गया, ये तो मिस्टेक मेरा है, गलती माफ कर दे मां, मैं खुली आम ऐलान करता हूं, ये शरीर का पूर्ण अधिकार आपका है, आपका है, आपका है, तीन तीन बार कहते हैं, और छाती में हाथ पीट कर कहता हूं, आपके शारीरिक सामाजिक पारमार्थिक जो भी कुछ आवश्यकता, मैं ही तो रहे की एकलौती बेटा हूं, सब अमार अमार सब मेरा है, ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टू टेक, जो कुछ आपका उत्तरदायित्व तो है सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। तो मां गलती हो गया माफ कर दो, मां तो कुछ बोल ही नहीं पाता, सारे पब्लिक देखते हैं, काम बन गया और क्या। तो फिर ये बोल करके बोले, बोले मां अब तो मुझे समझ में आया, तेरे चरण में खड़ा होकर के शपथ लेकर के तेरे सामने सारे हजारों पब्लिक के सामने खुलेआम घोषणा करके बोलता हूं, मैं गलती तो किया अभी समझ में आया, तो अब बोल मैं पेंट शर्ट पहनकर वापस आऊं घर, जो आप बोलेगी मैं सो करूंगा, बोलो अब बोलो, मैं घर वापस आऊं ना, ड्रेस जो कर बोलो छोड़ दूंगा, आप है मालिक, जो आप कहोगे मैं सो करूंगा, जो आप बोलेगी। टोटल पूरे उनके हाथ में गेंद पकड़ा दी, लो आप जो करे, सारे पब्लिक बोले माता आए रो रहे, तो बोलेंगे चलो चल पड़ेंगे, बोले प्रतिज्ञा के लिए जाऊंगा, अभी कपड़ा निकाल के तो सब बड़े जाऊंगा, बाल तो उगजाएगा उसे क्या बात है। सारे पब्लिक शांत तत्व में निमाय न दूंगी, वापस आ जाएंगे निमाय के रूप में वापस आ जाएंगे, हजारों पब्लिक देखते हैं, बोले माँ बोलती क्यों नहीं, बोल दो, बोलो ना, चलो चलो बेटा चलो। लेकिन ये कोई साधारण बेटा थोड़ी है, ओह बेटा तो पास में जाकर रेगुलेटर ऑन करके पकड़ा हुआ है, रेगुलेटर हाथ में पकड़ा हुआ है, इधर बोलता चलो, कैसे बोलेगी, हृदय के अंदर भी तो बैठे हैं वही, अंदर में रेगुलेटर अप करके रखे हैं, बाहर से बोलते हैं जो बोलेगी मैं वही करूंगा, सारे पब्लिक हजारों बैठते हैं, देखो माँ बोलती क्यों नहीं है, बोलती क्यों पकड़ रखा है अंदर से हृदय तंत्री, बहुत तीन तीन बार बोले माँ जो बोलो सो करूंगा अभी चले जाऊं, बोले तब माता बोलना शुरू किया, बोला निमाय सारे पब्लिक शांत, बोला तो माँ बोलेगी चलो फिर चलेंगे। बोला निमाय तू बोल रहा है कि मैं जो बोलूंगी तू वही करेगा, मैं बोलूंगी तो चल अभी कपड़ा बदल करके चले आएगा। हाँ अभी चलूंगा, बोलू गलती तो किया है और क्या। बोला निमाय नहीं नहीं सब आज फिर क्या नहीं कर रहा है। नहीं निमाय नहीं, मैं तेरे विच्छेद को तू मेरे से छोड़ के चले जाएगा असह्य दुख है, लेकिन फिर भी इस दुख को छाती में पत्थर रख करके सहन कर लूंगी, लेकिन आपके नाम में यही पब्लिक काल बदनाम करेंगे। आज ही तो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो, काली यही पब्लिक बोलेंगे, बोले देखो संन्यास ले लिया था, बाकायदा उत्सव हुआ था और दिन दो तीन बार छोड़कर आ गया। बातानसी आते ना, बातानसी शब्द है तो होता है उल्टी को बांति कहते हैं अंग भाषा में, उल्टी करना जानते हैं ना, कभी कभी उल्टी करते हैं ना आप लोग, जो उल्टी कर दिए और हफ्ता दिन के बाद मुझे उल्टी पड़ेगा फिर उसको चाटेंगे, कभी ऐसा किए, वो सोचने से उल्टी हो जाएगा फिर। तो उसको बोले बातानसी बांति, जो मतलब उल्टी करने के बाद में फिर कुछ दिन के बाद आकर फिर से उल्टी को फिर इनपुट ले लेना, जो आउटपुट किया था फिर उसको इन कर लेना। तो जिसको अब त्याग दिया था, जिस संसार को सब कुछ परिवार को सब कुछ त्याग दिया था, उसको फिर लाकर अपसेट करना, ये तो बातानसी है। यही लोग काल कहेंगे समाज में आपके नाम में, निंदा शब्द कहेंगे तो आपके निंदा में सहन नहीं कर सकती हूं, छाती फट जाएगी, आपके विरह तो सहन कर सकती हूं लेकिन तू मेरा अकलता बेटा, आपके नाम में बदनाम निंदा ये मेरे से सहन नहीं हो सकता, ये असह्य है सहन। तो इसलिए और तो वापस नहीं आ सकता, संन्यास ले ही लिया, उल्टी कर लिया तो कर लिया, तो वापस तो घर नहीं जा सकता। तो बोल माँ फिर बताओ भाई कहाँ रुकूंगा और क्या, मैं घर में नहीं जाऊंगा, घर के पास से नया एक कमरा रेंट में लेकर रहा हूँ, नहीं तो यहीं रहो, सारे क्लियर करेंगे ना, प्राइवेट साइन करा लेंगे। बोले निमाय ये भी नहीं हो सकता, ये भी फिर अपवाद होगा। बोले देखो सन्यास लिया फिर गांव में रहता है, वो गाँव में फिर आकर रहता है घर बाड़ी में आ सकता है। बोले नहीं अब फिर बोले मैं तो वृंदावन जा ही रहा था, वृंदावन नहीं बेटा वृंदावन मत जाओ, फिर वृंदावन बहुत दूर है, मैं चाहता हूं कि तेरा धर्म भी पालन हो और मेरा जीवन भी रहते, मैं तेरा बारे में थोड़ा सुनू, खबर मिल जाएगा बेटा ठाई सही है बस ठीक है और क्या करूं, इतना ही मेरे लिए बहुत है, मुझे कई संदेश मिल जाएगा, संवाद मिल जाएगा तुम्हारा बेटा ठीक ठाक है बस, मैं इसी में मेरा तृप्ति हो जाऊंगी। तो इसलिए ज्यादा दूर नहीं बेटा, पुरी में जाओ, पुरी यहां से 500-600 किलोमीटर दूर है, हर रथ यात्रा के समय में लोग जाते आते रहते हैं, तो तेरा खबर मुझे मिलेगा तो पूरी मिलो। तो माँ से सैंक्शन करा लिए, सन्यास में भी रहेंगे और पूरी में रहेंगे, करा लिए पब्लिकली। तो फिर 2-4 दिन के बाद फिर आते हैं, ये बड़े मर्मंतुद वर्णन है, नीलाचल गमन, शांतिपुर से नीलाचल पथ में आए, आते समय रास्ता में बीच में चतुर्थ अध्याय में माधवेंद्रपुरी का भक्ति के वर्णन, जिसमें खिरचरा गोपनाथ की लीला आता है, बड़े लंबा प्रसंग, यही बड़े मर्मंतुद प्रसंग है माधवेंद्रपुरी के प्रेम भक्ति का वर्णन। उस प्रसंग के बाद में महाप्रभु आते हैं कटक, कटक में साखी गोपाल के वर्णन आता है, साखी गोपाल विशाल विस्तृत वर्णन है, साखी गोपाल लीला के बाद में वर्णन आता है पुरी प्रवेश का, पुरी प्रवेश दंडभंग, दंडभंग के बाद पुरी प्रवेश, पुरी प्रवेश करते ही इमीडिएट ओपनिंग बैटिंग चलाए सार्वभौम के ऊपर, सार्वभौम उद्धार, पुरी आते ही सार्वभौम को एक हफ्ता में उसका खटिया खड़ा कर दिए, जस्ट इन अ वीक, एक हफ्ता में, क्योंकि महाप्रभु संन्यास लिए, संन्यास लेते हैं हम तो प्रीचिंग के लिए, कलयुग में संन्यास बंद है, प्रीचिंग संन्यास है तो प्रचार करने के लिए, बोले प्रचार करने के लिए माँ ने तो मुझे जोन दे दिया उड़ीसा, ये मेरा प्रीचिंग जोन है, एरिया मुझे वही मिला, तो बोले यहाँ से जाऊँ क्या प्रीचिंग करूँ, स्टूडेंट प्रीचिंग करूँ, कॉलेज प्रीचिंग करूँ, कंग्रीगेशन प्रीचिंग करूँ, या नाम संकीर्तन करूँ, क्या करूँ, मेरे पास ना फंड है ना बाकी सारे सब इस प्रकार समझ, कुछ नहीं तो कैसे करूं, तो भगवान पिचिंग कैसे करेंगे, सोच सोच करके पहले जोन मिला उनको पूरा उड़ीसा क्षेत्र के, इस प्रकार पिचिंग शुरू किए। संपूर्ण उत्कल वासियों का जीवन धन प्राण थे श्री जगन्नाथ, सभी जगन्नाथ के प्रति स्वाभाविक आसक्त है, स्वाभाविक समस्त उत्कलवासी। और जगन्नाथ जी के जो ओडिशा के जो राजा है, और जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माने जाते हैं, और तो ने बोले राजा फाजा के पास जाऊंगा, होगा नहीं होगा, आईडी प्रूफ नहीं, अलाउ नहीं होगा, कैसे करो। तो देखे जो जगन्नाथ जी के जो प्रथम मैनेजमेंट का हेड जो है, दी हेड प्रिस्ट जगन्नाथ मंदिर के, वो है सार्वभौम पंडित। और सार्वभौम पंडित उड़ीसा वासी नहीं है, वो तो अपॉइंटेड प्रिस्ट थे, पूरे इंडिया लेवल में क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू लिया गया था इंडिया लेवल में, सारे बड़े बड़े विज्ञ पंडित का क्या बोलते हैं उसको, परीक्षा लिया गया, इंटरव्यू लिया गया, उसी में से पास होकर के सार्वभौम सक्सेस हुए, क्वालिफाई किए, ये सबसे भारतवर्ष से सबसे दिग्गज पंडित विद्वान। तो उनको श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुरोधा के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया, बहुत बड़े पदवी है, राजा भी जाकर हाथ जोड़ते हैं, सभी हाथ जोड़ते, इतनी बड़ी पदवी, दी स्टेट का जो जीवन धन है जगन्नाथ, उन्हीं के दी हेड मैनेजमेंट हेड हो, मुख्य प्रधान के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया। तो इसी वजह से संपूर्ण ओडिशा के जितने विद्वत वर्ग है, जितने पढ़े लिखे ब्राह्मण पंडित संयमी पुरुष, राजा से लेकर प्रजा तक जगन्नाथ विग्रह है, लेकिन जो मुख्य जगन्नाथ जी के मेन पर्सन है, सार्वभौम पंडित प्रकांड विद्वान है, उनके प्रति सब पूज्य भाव रखते हैं, भक्ति भाव, सार्वभौम पंडित उनका कहना, ये तो साक्षात बृहस्पति है। केवल ओडिशा का नहीं, काशी विद्या के राजधानी माना जाता था, काशी के जो सन्यासी गण होते थे उन्हीं के हेड प्रकाश नंद भी सार्वभौम को साथ बुला, उनको पास भेजते थे उन ट्रेनिंग लेने के लिए किसको, सन्यासी को, और वो भी बड़े सम्मान करते थे। कांची कामकोटी से दक्षिण में वो लोग भी ट्रेनिंग लेने के लिए उनका पास आते, वो जानते हैं पूरे भारत में उनके समान कोई वेदांति नहीं है, दांत उनका था लेकिन ऐसे वेदांति कोई नहीं, ऐसे शंकर भाष्य के ऊपर उनका प्रवेश किसी का नहीं। तो इसलिए इतने बड़े सम्मानीय पूज्य व्यक्ति, मान्य व्यक्ति सार्वभौम पंडित, पूरा स्टेट में, पूरा कंट्री में। तो महाप्रभु का टेक्निक देखिए, बोले उसी को टारगेट करता हूं, ऐसे एक शिकार करूं, एक शिकार से पूरा स्टेट ही शिकार हो जाए, एक पटाऊंगा तो सारे स्टेट पटेंगे। तो सार्वभौम को टारगेट किए, और जाकर घर में उसको प्रचार नहीं किए, पंपलेट नहीं बांटे, कुछ ये नहीं चलाए, पीपीटी नहीं चलाए, उनको बस था ना मेसिन फेसिन, सीधा जा करके भगवान के सामने मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान तो स्वयं है, सार्वभौम का सामने गिरे, सार्वभौम जो मंदिर में थे तो उन्हीं का सामने गिरे, हो उनको क्या, सार्वभौम के सामने गिरे, सार्वभौम आया, चश्मा ऐसे करके, फिर ऐसे करके देखता, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, शॉर्ट साइड लॉन्ग साइड करके देखता था, क्योंकि जब गिरे थे सारे शरीर में चिन्ह दिखा दिए थे, अष्ट सात्विक विकार पकड़ दिखाई पड़ रहा था। सार्वभौम बुढ़ा डिक्स ने खोती वो याद करता था, वो देखता था, कैसे संभव है, कैसे हो सकता है मनुष्य के अंदर ये सब लक्षण, दूसरे देखता था, है ये तो कभी नहीं हो सकता, तो कोई महापुरुष में देवता में नहीं हो सकता। सारे लक्षण देखने के बाद बूढ़ा बिल्कुल बैठ गया चुप होकर, उनका दिमाग काम नहीं करता, उनका शास्त्र के हिसाब से ये तो ये संपूर्ण लक्षण जो महाभाव के अधिरूढ़ अधिकारी केवल श्री राधारानी में हो सकता, एक किसी में हो ही नहीं सकता, इसमें कैसे, पूरा दिमाग आउट उसका, कोई शास्त्र ज्ञान काम नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली कुछ थ्योरी कुछ, इस करते हुए विमूढ़ अवस्था में बैठा है। तो पुजारी आकर बोले, सार गोसाई ना क्या ना नीति का समय हो रहा, भोग लगेगा, लेकिन वो मुर्दा है कि जिंदा है पता नहीं। तो सारा हम सेंस में बोले, मैं भी फंस गया था ठीक है उनको उठाना पड़ेगा, भोग लगेगा, चलो नहीं जिंदा है वो सेंसलेस, तो लोग बुलाकर उठा के ले गए अपने घर में। आपने घर में ले जा करके और 9 घंटा तक तो फंसे, उस दिन मंदिर नहीं आ पाए, ऑटोमेटिक ऑफ हो गए, और क्या काम नहीं। तो इसी प्रकार से तो भगवान फिर उनका स्टूडेंट बने, स्टूडेंट बन के एक हफ्ता में उनको ट्रीटमेंट कर दिए बिना कोई सिरप इंजेक्शन। ओपन हार्ट, ऐसे ओपन हार्ट हो गया कि बिना टच में, टचलेस। सार्वभौम उद्धार होने के बाद में जब एक हफ्ता के बाद संपूर्ण देशवासी जितने मिश्र ब्राह्मण पूजा पंडा पढ़ियारी सब जो सार्वभौम को इतने हृदय से सम्मान करते जानते थे, और सार्वभौम का जो रूप था जगन्नाथ के, आज भी पंडे देखो मोटे मोटे सोने के चांदी के हार पहनते हैं, हाँ दिखा जा करके, हाँ ये मोटे मोटे आधा आधा किलो का पहनते हैं गले में, और सभी ऐसे ऐसे ही तिलक त्रिपुंड रहे, त्रिपुंड करके और चकाचौंध आते हैं पान चुबाते हुए, हाँ। जगन्नाथ है। एक हफ्ता महाप्रभु स्टूडेंट बने, एक हफ्ता बड़े ओबीडियंट स्टूडेंट बने। वीक एंड के बाद में सार्वभौम का हेडलाइट स्पर्श लाइट हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा चेंज हो गया, मतलब हेडलाइट जो था ऐसा वो ऐसा हो गया, हॉरिजॉन्टल चेंज होकर वर्टिकल हो गया, अब अपग्रेड हो गया, अभी ऐसा नहीं। सोने का जो स्पॉटलाइट था लिखा था सब उसका नजर पड़ता था, वो सब उतार के फेंक करके तुलसी के कंठी लकड़ी का लगा दी, हेडलाइट स्पॉटलाइट दोनों चेंज हो गए। और जो पाट वस्त्र मन जिस प्रकार के अहंकार भाव था अब बिल्कुल चूहे की तरह, जिसको देखे इतने दन्यता, इसने इतने नम्रता आ गया हफ्ता भर में, कैसे हो गया, कोई ट्रेनिंग भी नहीं लिए, न्यू ड्यूटी ट्रेनिंग तो कम से कम साल भर करते हैं, पीला कपड़ा सफेद कपड़ा में कुछ नहीं किए थे, जस्ट इन वन वीक, ये ट्रेनिंग से नहीं होता। जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासुते सुराहा, भगवान के भक्ति हो जाए तो दिव्य गुण सारे अपने आप एंट्री कर जाए, डाउनलोड हो जाएगा फटाफट, तो सारे आ गया उनके अंदर, दीनता हीनता अमानिता मानदता सब कुछ आ गया, सहिष्णुता आदि ऐसे हो गए। एक हफ्ता के बाद सार्वभौम पंडित जब पूरी मंदिर में आए, जो पब्लिक पुजारी जो हेड सब देखे आश्चर्य होकर देखे, रियली वही सार्वभौम है गोसाई आप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये क्या हो गया, बिजली के तरह पूरे न्यूज फैल गया पुरी में, सार्वभौम का अद्भुत परिवर्तन, भेष में भूषा में व्यवहार में बातों में बिल्कुल अपसेट डाउन, सार्वभौम का परिवर्तन हुआ, पूरा ओडिशा में मैसेज फैल गया, जितने बड़े बड़े राजा से प्रजा तक हिल गए, कैसे हुआ क्या हुआ, महाराज प्रतापुद्र कटक से फोन किए, व्हाट इज गोइंग ऑन, सार्वभौम पंडित बिल्कुल चेंज, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, लकड़ी के कंठी लगाए वैसी तिलक चेंज हो गया, कैसे क्या क्या रीजन क्या है, सब जाकर काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र बड़े बड़े लोग सब जाकर पूछे, बड़ी हरी गोसाई क्या हो गया, द मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन थे, वो बोले क्या बताऊं, ये तो जगन्नाथ जो है हम देख रहे हैं पूजा कर विग्रह रूप में, एक जगन्नाथ आए हैं चलते फिरते वाले जगन्नाथ, वो काले हैं वो गोरे हैं, बोले सचल जगन्नाथ गौर मूर्ति उन्हीं के प्रभाव है, हफ्ता भर में मेरा ऑपरेशन कर दिया, बोले मैं जानता हूं मैं क्या था, मेरा हृदय लॉजिक आर्गुमेंट में तर्क का जड़ स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था, इतने कठिन था, इतने जड़ लोहा जैसा टाण था, उसको मेल्ट करना कोई बाप के बेसाद नहीं था, कोई कर डाले। काशी से लेकर कांची तक कांप जाते थे, कोई नहीं कर पाया मुझे बदला नहीं डाले, सब सरेंडर करते मेरे पास। लेकिन ये जो आया है नए सन्यासी, एक हफ्ता में पानी पानी करके निकाल दिया, जो स्टेनलेस स्टील को ब्लास्ट फर्नेस के आग भी फेल मार जाता मेल्ट नहीं कर पाता, ऐसे प्रचंड प्रताप है उसका, मेल्ट कर दिया उसको, मैं बदल गया, मुझे भी नहीं पता चला। ये उनका प्रभाव है। रियली सारे सुन करके राजा से प्रजा तक बोले, सार्वभौम पंडित बता रहे हो, झूठ थोड़ी बोलेगा, ये तो साक्षात इतने बृहस्पति है, इतने पंडित झूठ नहीं बोलेंगे, प्रकांड पंडित बड़े सदाचारी नियम के कट्टर है, वो कभी नहीं बोलेंगे धर्म नहीं करेंगे पाप झूठ नहीं बोल सकते, वो बोलते हैं कि ये साक्षात परमेश्वर है। ये जो सन्यासी आए थे नाच नाच गाने वाले, वही हम सोच नाचने वाले कोई आया है, वही है नाचपटी वाले, वही है। अरे थोड़ा मैं भी मिल लेता यार, आपको पता नहीं चलेगा, अगर कोई बोलेगा कि सियोर शर्ट पता चलेगा कि ना, तो आप जाएंगे ना, थोड़ा मैं भी देख लेता यार, पहले देखा ठीक से नहीं देख पाया, अब ठीक से देखूंगा। सारे उड़ीसा के जो बड़े बड़े मान्य गण्य लोग सब मिलना चाहे, लेकिन कैसे मिलेंगे, सार्वभौम के द्वारा बोले प्लीज हमको थोड़ा मिला देना, हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते। तो महाप्रभु ठीक टाइम ले करके चले गए वहां से साउथ इंडिया, 2 साल आउट, वो बेचारे देख नहीं पाए, आपने घर में आकर निकल गए हाथ से गया, अरे यहीं आए थे यहीं थे हम देख नहीं पाए, हाय हाय सर पिटते रहे, अब देखो कब आएंगे तब देखेंगे। सार्वभौम को राजा आकर बोला तुम चेक रखा क्यों नहीं, रुका क्यों नहीं उनको, मैं कैसे रुकाऊंगा, वो साक्षात ईश्वर है भाई, वो साक्षात परमेश्वर है, वो किसी का बस में थोड़ी, वो तो परम स्वतंत्र परतंत्र है। कब आएंगे हो, कब आएंगे पता नहीं, जब आएंगे तब आएंगे। तो इस सार्वभौम को उद्धार के बाद में जो दक्षिण गमन कर रहे थे, षष्ठ अध्याय के बाद सप्तम अध्याय में और अष्टम तक, सप्तम अध्याय में जैसे दक्षिण गमन किए, वासुदेव आदि उद्धार, कुर्म ब्राह्मण उद्धार, उसके बाद में अष्टम अध्याय में पहुंच गए रामानंद सम्मान, रामानंद मिलन, वो भी सार्वभौम रिक्वेस्ट करके बताते प्रभु आप जब जा रहे हैं साउथ टूर में तो जरूर उनसे मिलना, मैं अभी समझ में आ रहा है कि रामानंद कौन है, मैं तो उनको इसी डंकार कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि वो पर्सनालिटी क्या है, आप मिलने से स्वयं के पता चल जाएगा, इतने हाई रिक्वेस्ट रिकमेंड किया था सार्वभौम ने। तो महाप्रभु का रामानंद के साथ जो मिलन, इतने शिखर का मिलन है, रामानंद महाप्रभु का जो वार्तालाप है इतने गंभीर है, इतने डीप है, सैद्धांतिक है, कि एक समय आया बात करते करते महाप्रभु उठ करके जो बार बार पूछते बताओ बताओ और बताओ और आगे बताओ और आगे बताओ, ऐसे बातचीत करते करते भगवान श्री चैतन्य बाबर उठ करके जबरदस्त सिंह मुंह बंद, स्टॉप इट, मुंह बंद की बोले, नो आगे मत बोलो, बोला बोलना नहीं चाहिए, बंद करो उसको। ऐसे उन्नत उन्नत टॉपिक तब चले गए, भगवान को बंद करना पड़ा, ना उसके आगे बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, उसको सुनने का अधिकारी है ही नहीं, इस चरम सीमा तक गया था उस अध्याय में भगवान ने रामानंद प्रसंग में किए। और उसके बाद में थोड़ा सॉफ हो गया, थोड़ा डाउन हो गया, ग्राफिकली टूट था उससे, फिर दक्षिण भारत में अन्य अन्य सब उद्धार किए, कई लोगों कैसे उद्धार किए, फिर वेंकट भट्ट मिलन हुआ। तो इसे वर्णन करते करते अंत तक वापस आए पुरी में, पुरी में जो आए पुरी तो बिल्कुल 100 क्या कई हजार वोल्ट में गर्म होकर था, क्योंकि 2 साल तक वेट करके बैठे थे, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। अब जब पता चला आ रहे हैं लोग, तो ताव पर थे, पागल होकर थे उनको मिलने के लिए, ठीक इसी समय में आए। तो कैसे ग्रीटिंग किया गया महाप्रभु को, प्रताप रुद्र उद्धार करते हैं, गुंडीचा मंदिर मार्जन, फिर नीलाचल निवास, नीलाचल में भक्तों के साथ समागम, सारे नवद्वीप में खबर मिल गया महाप्रभु वापस आ गए, नवद्वीप से हजारों संख्या में लोग आए मिलने के लिए, 4-4 महीने आके रुकते थे महाप्रभु मिलने के लिए, जब भक्तगण आते थे मिलने के लिए, कैसे भक्तों के साथ महाप्रभु के मिलन, महाप्रभु जो निज भक्त हैं उनके भक्त हैं उनके साथ मिलन कैसे होता है, कैसे वार्ताव होता है, कैसे उनको बुलाते थे भोजन के लिए अपने अपने घर में, किस प्रकार महाप्रभु भोजन लीला करते हैं उनके साथ। और जब अंत में कार्तिक महीना आता है, बोलते हैं अब जाओ घर में, अब सब घर परिवार वाले घर में जाओ, चार महीना हो गया, जो विदा होता था उसकी वर्णन किए हैं महाप्रभु का, अपने अंतरंग भक्त से विदा, वापस जा रहे हैं फिर नवदीपपुरी से, उसका दारुण वर्णन है। उसके बाद में महाप्रभु मन करते हैं वृंदावन जाने के लिए, सार्वभौम रामानंद और सर्व दामोदर आदि बहुत बोलते, नहीं नहीं अभी तो बिजी है, ये काम कोई बहाना दे दे कर, दो ढाई साल रुकवा दिए उनको ढाई साल को, देखो आप ऐसे रुकते मुझे ना, तो फिर तो और क्या करेंगे, छोड़े बोले जाओ। जाने के लिए जो विचार हुआ, सब बोले अब जाएंगे ना, हम जाएंगे, बोले हम भी चलेंगे, चलो चलेंगे वृंदावन चलेंगे, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन देना नहीं पड़ता, रिजर्वेशन तो करना ही नहीं, सब अपना अपना पैर में चल के जाएंगे, अपना अपना बोझा उठा के जाएंगे, तो ना गेस्ट हाउस बुकिंग करना था, ना प्रसाद का अरेंजमेंट करना था, ना कुछ नहीं करना था, वैसे टूर निकाले कोई भी आओ, आपका सामान आप ढोएगा, आपको नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं। वो टूर निकला, आप लोग को खाने का पीने का रहने का एसी रूम सब व्यवस्था करने के बाद 50 लोग इकट्ठा करना मुश्किल होता है, पता होगा उनको। और महाप्रभु कुछ भी आपका सामान आपको ढोना है, कब तक टूर चले कोई टाइम नहीं, कितना दिन लगेगा कोई भरोसा नहीं, डेट फिक्स नहीं है कि छुट्टी लेकर मैं जाऊं, डेट भी फिक्स नहीं है, ना रहने का फिक्स है, ना खाने का फिक्स है, ना जाने का कोई गाड़ी बुकिंग है, कुछ भी नहीं है। इतने लोग साथ में चले महाप्रभु के, वर्णन करते हैं अर्बुद संख्या में मिलियंस एंड बिलियंस पीपल चले। उनका एक वर्णन कहते हैं कि जब बंगाल में प्रवेश करते समय बंगाल तक जुड़ते गए, जो जो गांव पूरा जुड़ते गए, आबाल वृद्ध वनिता लोग पीछे पड़ गए। जब हाली शहर आया था महाप्रभु अपने गुरुजी ईश्वरपुरी के घर आया, ईश्वरपुरी तो थे नहीं उनके स्थान था, महाप्रभु जाकर प्रणाम किए और सिर्फ धूल उठाकर सर में लगा दिए, थोड़ा धूल लाके मिले गुरुजी का स्थान है ऐसे उनको सम्मान करने के लिए धूल उठा के लगाए, महाप्रभु धूल उठा के लगाए, सब बोले हम भी लगाएंगे, महाप्रभु गुरुजी सब धूल उठा कर लगाए। पार्टी जब आगे चल गया, देखिए विशाल तालाब बना हुआ है, अभी भी तालाब है, उसका नाम चैतन्य डूबा है, आप जाएंगे ना उसको पोखरी पुकर बोलते हैं, मतलब बड़े पंड है, कैसे बन गया पंड, कोई खुदा के जैसे भी ला करके नहीं, धूल उठाते उठाते तो कितने पब्लिक होंगे अंदाज लगा लीजिए, कितने संख्या में पब्लिक थे, धूल उठा के इतने बड़ा तालाब बन गया, अपने आप में कोई खुदाई नहीं कुछ नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया, अपने आप केवल धूल लेकर सर में लगाया, कोई आधा किलो दौड़ी लेगा धूल, थोड़ा दो पांच ग्राम लगा, दो पांच ग्राम धूल उठा तो था इतने बड़े तालाब बन गया, तो कितने पब्लिक होंगे, ये उसका प्रमाण आज भी। तो वहां से फिर वृंदावन न जा करके भगवान है चल गए राम के लिए गौड़ प्रवेश, और मुख्य पार्षद के साथ मिलन, नामकरण, दबीर खास और साकर मलिक के साथ मिलन, रूप सनातन के नामकरण, उनके बाद कन्हैया नाटशाला पर जा करके वापस आके गौड़ में एक डेढ़ साल रुक गए, पुराने जो छोड़ कर गए थे गौड़ या भक्त जो थे अपना सभी का उनके घर में, उनका घर में इतने उत्कट वर्णन है इस भक्त के साथ जो मिलन लीला, क्या क्या अद्भुत व्यवहार है, गौड़ वर्णन करके अंत में फिर आते हैं। और मैं भूल गया बोलने के, जब इतनी पब्लिक निकले पुरी से जाने के लिए वृंदावन, तो गदाधर पंडित वो जाना चाहते थे लेकिन वो संन्यास ले लिए थे, तो महाप्रभु बोले तुम क्षेत्र संन्यास ले तो क्षेत्र में रह कैसे जाएगा, और गोपीनाथ जी के प्रकट हुए, गोपीनाथ के पुजारी काम करो, पुजारी पाने छोड़ के कैसे जाएगा, कोई छुट्टी थोड़ी देंगे, आप अकेले सिंगल पुजारी हो कैसे जाएंगे अपने, तो वो बोले मैं नहीं मानता, बोले भाड़ में जाने दो संन्यास विन्यास हम नहीं जानते, बोले सब चूल्हा में जाने दो, आई डोंट केयर, मैं कपड़ा अभी फेंकड़ देता हूँ उठा करके, अभी पैंट पहन लूंगा बोले गोपीनाथ के पूजा आप ही अकेले पुजारी हो, गोपीनाथ के पूजा आपके चरण की सेवा करोड़ों गोपीनाथ के पूजा से बढ़ करके, हम नहीं जानते गोपीनाथ
अब क्या युक्ति करें, तैयार नहीं। महाप्रभु समझा, अरे लोक निंदा होगा, लोग बोलेंगे देखो ये क्या आदमी है, संन्यास त्याग दिया, पुजारी डिपार्टमेंट छोड़ दिया, ऐसे जा रहे, लोग मुझे बोलेंगे, प्लीज मत आइए, नहीं लेंगे मुझे। ना नहीं, कैसे लेकर जाऊं, आप मत दीजिए, मत जाऊं, आपके साथ नहीं जाऊंगा, अलग से जाऊंगा। अब क्या करें, लोग आपको बोलेंगे ना, आपको बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो आपके साथ जाऊंगा नहीं, मैं डिफरेंट टूर में रह रहा हूं, मेरा ग्रुप अलग है, आपका ग्रुप अलग, कितने ग्रुप का, मैं अकेला सारे आप, मैं अकेला, मेरा अलग से जाऊं। और 250 मीटर पीछे उनका ग्रुप चल रहा था, अकेले थे वो, आपने जो, मैं आपका साथ नहीं, क्यों मेरे देखते हैं आप, देखो मैं अलग हूं, आप अलग हो। 60 किलोमीटर नहीं, 90 किलोमीटर तक पीछे पीछे आए, वहां पर मना कर, लेकिन नहीं चल चल, कटक तक आए, कटक में महाप्रभु बोले दिस इज टू मच, ये मानता नहीं, तो बुलाए उनको एक जगह में बैठे, पेड़ के नीचे, बकुल वृक्ष के नीचे बुलाए, गदाधर को बुलाओ, महाप्रभु बुला रहे ना, क्यों वो तो मुझसे अलग कर दिया, मैं अलग समझ, बुला रहे तो आया, प्रणाम किया, क्यों बुला रहे, गदाधर अब जाना, आप तो, मैं जा रहा है, मैं तो अलग टूर है मेरा, तो मेरे साथ मैंने, और मैं तो बस यही मेरा जीवन है, लक्ष्य और कुछ नहीं है, संन्यास लिया था आपके संग पाने के लिए, गोपीनाथ पूजा कर रहा था आपके संग पाने के लिए, आप सब क्या मतलब, कोई नहीं। महाप्रभु गदाधर से जो अलग करने का प्रयास अपनाए, समझने वाले आदमी का हृदय फट जाएगा। गदाधर को बोला कि सबके सामने, बोले गदाधर मैं जानता हूं तू मेरे प्रति कितने आसक्त है, तू मेरा केवल कल्याण चाहता है, मेरे सुख चाहता है, लेकिन सचमुच तेरे मन से मेरे सुख चाहता ना, मेरा सुख सचमुच मेरे हिसाब से चाहता है, तू अगर तू ही सुखी होना चाहता है मेरे पास रह करके, आपका ही लक्ष्य है, तू ही सुखी होना चाहता है, ना मुझे सुख देना चाहता है। गदाधर खड़े हुए, क्या ईसा क्यों कह रहे, क्या कहना चाहते हैं, मैं यही कहना चाहता हूं अगर मेरे प्रसन्नता चाहते हो। गदाधर पंडित इतने सुनकर सेकंड लाइन बोलना नहीं पड़ा, अगर मेरे प्रसन्नता चाहते हो, धुम करके गिर पड़े, सेंसलेस हो गए, समझ गए क्या बोलना चाहते, अगर मेरे प्रसन्नता चाहते हो गोव्याक, गोव्याक बोलना नहीं पड़ा, बोलने से पहले मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे मूर्छित होकर गिर पड़े, महाप्रभु बोले कि नाउ रेडी है, रेडी इमीडिएट भागो, जो उठेगा तो गड़बड़ करेगा, सेंसलेस अवस्था में चलो। उनको मूर्छित गिरा करके नाव में बैठ गए, नाव चालू हो गया, सार्वभौम को बुलाए, रो रहे थे सार्वभौम, बोले देखो दो चार आदमी लेकर उन्हें उठा करके, इस मूर्छित अवस्था रहे, उठा कर लो, लोड करके ले जाओ, बाद में जो चेत आएगा संभाल लेना, चल दिया। भगवान के हृदय जितने कोमलाति कोमल है, इतने कोमल है, इतने कठोराति कठोर है, ऐसी दशा में कैसे जा सकते हैं, इतने प्रिय भक्त को मूर्छित गिरा कर भाग जाए, भाग गए। और 2 साल के बाद वापस आए पुरी में, गदाधर तो 2 साल तक सेवा कर रहा था बेचारा, जाने पर बड़े दुखी हो करके, जैसे देखा महाप्रभु पुरी वापस आए, आकर प्रणाम किया, दर्शन अच्छा हुआ, वृंदावन अच्छा घूमना कर, महाप्रभु आके गदाधर को आलिंगन, बोले गदाधर नहीं वृंदावन जा पाया, वापस आए, टूर कैंसिल, प्रोग्राम कैंसिल। बोले कैसे, इतने दिन तक रहते, बोले इतने दिन तक गया, लेकिन बहुत प्रयास किया, लेकिन वृंदावन जाना नहीं हुआ। बोले क्यों, क्योंकि आप जैसे भक्त को दुखी करके मैं भी पूरा कार्य नहीं कर सकता, दूसरा क्या करेगा, आपको दुखी करके गया था इसलिए मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए अगर आप खुशी मन से मुझे परमिशन दो तब मैं वृंदावन जा पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसे बात बोलते हैं, गदाधर पानी पानी हो, बोले नहीं प्रभु ऐसे क्यों कहते, आप जाए ना, मैं थोड़ी मना, आप जाए, वो परमिशन दिया तब गए फिर वृंदावन। परमिशन लेने के क्या तरीका है, तो गदाधर वहां से वापस आते हैं पुरी में, 18 साल तक नीलाचल में जो जो लीला किए इसको वर्णन करते हैं, 18 साल से 12 साल मध्य लीला के वर्णन है। इसमें मुख्यतः आता है सार्वभौम के पास भोजन लीला, भक्तों के साथ मिलन लीला, अमोघ आदि उद्धार, और सबसे दी इंपोर्टेंट चैप्टर है रूप सनातन के शिक्षा। महाप्रभु के सारा सर्वस्व सिद्धांत शिक्षा उन दोनों के द्वारा दिए हैं। इन दोनों का संग कैसे किस प्रकार शिक्षा दिए, भक्ति क्या है, भक्त कौन है, उनका कैसे आचरण होना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए, कैसे वार्ताव करना चाहिए, कैसे दीनता, कैसे सहिष्णुता, कैसे विनम्रता, कैसे अमानिता, कैसे मानदता, प्रैक्टिकली स्वयं आचरण करके दिखा दिए, प्रैक्टिकली प्रोजेक्शन किए। ये सब को वर्णन करने के बाद में आज कविराज गोस्वामी को मन नहीं माना, हाथ नहीं माना, दोबारा शॉर्टकट में उसे लिखे, बोले ये सब है ऑल दिस 25 वर्स अगेन। उसके बाद में बोलते हैं ये वर्ष जे लीला अमृत विने खाए जदि अन्य पाने, इसी को छोड़ करके दूसरा पढ़ोगे, इसको पढ़ना सुनना छोड़ करके, इस चैतन्य अमृत लीला को छोड़ करके दूसरा कुछ टाइम खराब करना चाहते हैं? अगर खाते हैं, अगर दूसरे चीज को आप लेना स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? तवे भक्तेरा दुर्बल जीवन, भक्त दुर्बल हो जाएगा, भक्ति खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं खाएगा सोएगा डाउनफॉल होगा, ईटिंग स्लीपिंग वैसे ही करेगा और कुछ। अगर इस प्रकार ईटिंग स्लीपिंग से उठ करके उत्फुल्लित होना चाहेंगे, चैंटिंग डांसिंग फेस्टिंग, हाँ बिल्कुल जोश में आ जाओ, तब इसके लिए इंजेक्शन जो है अंतर खेपण की तरह काम करता है इसी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला। पूरे मध्य लीला का क्या, एक तारा एक बिंदु पाने, जारा एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने, एक चैप्टर एक बिंदु ही ले लो उत्फुल्ल हो जाएगा तनु और मन, शरीर और मन दोनों ही खिल उठेगा। ऐसे खिल उठेगा तुझे पता नहीं चलेगा कब हंसेगा कब गाएगा कब नाचेगा, ऐसे करके छोड़ देगा, पागल करवा देगा। ये लीला, ये मध्य लीला के विषय वस्तु है। इसलिए मैं बोला कि इस मध्य लीला के विषय वस्तु में आपके सबसे फेवरेट डिश कौन सा है, उसी विषय को अगर पुंखानुपुंख आलोचना किया जाए उसी सब्जेक्ट के ऊपर, तब आपको पता चलेगा आप भी इसी क्षण यहीं पे खड़े होकर नाचेंगे हंसेंगे गाएंगे। ए बोलते होगा उसका इफेक्ट है, जैसे स्लीपिंग पिल खाने से नींद आ जाएगा बैठे बैठे चलते हैं, तो वही पिल खाने से ये नचाएगा उत्फुल्लित कर देगा। तो अगर आप लोग भक्ति में सुदृढ़ होना चाहते हैं, उत्फुल्लित होना चाहते हैं, इस प्रकार स्थिति में आना चाहते हैं, तो एक एक डोज इसमें लेने के लिए प्रयास कीजिए। इस डोज को छोड़कर अगर दूसरा कुछ लेते हैं, पनीर सब्जी पकोड़े फिंगर चिप्स हैं, एक तो अब वो जो जो होता है आप तो सब पता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कौन सा गान है, नांगलोई या होडेल, कहाँ कहाँ सब जाने का, यही सब करेंगे, धन हानि प्राण पीड़ा होगा। हाँ, और वो जब खाएंगे ये तो अमृत है, पेट खराब का सवाल नहीं, मन खराब नहीं होगा, तन मन सब उत्फुल्लित हो जाएगा। कहने का है भक्ति के लिए भक्तों के लिए केवल यही डोज है, इसी के आस्वादन करना चाहिए, जिसी के आस्वादन से वो सवल सचेत सुदृढ़ रहेंगे, नहीं तो फ्यू जुड़ जाएगा। चला रहा है बना नहीं है। हरे कृष्ण कृष्ण, क्लास में सोता है, जप में सोता है, केवल खाने के समय आगे बढ़ जाता है, क्योंकि खाना क्या है, ये है खाए यदि अन्न पाने, पनीर सब्जी और पुलाव, अन्न पान अन्न है, ये अन्न खाएंगे तब नांगलोई में जाएंगे। और अगर उसको छोड़ करके जलीला अमृत तब फिर यहीं पे नाचेंगे गाएंगे हंसेंगे कंपमान कर डालेंगे, ऐसे आनंदित हो जाएंगे, उत्फुल्लित तनु मन, तन और मन इतने प्रसन्न हो जाएगा, इतने प्रसन्न हो जाएगा कि बोला नहीं जा सकता, उत्फुल्लित हो जाएगा। अब उत्फुल्लित कभी हम तक कभी हुए ही नहीं, तो मैं कैसे समझाऊं, है ना, कोई एकाध उत्फुल्लित तो कभी एक बार हो तब तो बताएंगे ऐसा, कैसा किसी को बता ही नहीं, उसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, क्योंकि कभी हम लोग उत्फुल्लित अभी हुए ही नहीं। उत्फुल्लित होने के लिए एक ड्रॉप खाओ तब उत्फुल्लित होंगे, तब पता चलेगा हो यही से ना, यही से हमें बेकार टाइम खराब कर रहा था यार खिचड़ी खा करके। हाँ, कोई पूरी हलवा कोई पनीर सब्जी कुछ नहीं जरूरत है, आपने आप पे सबल सचेष्ट सुदृढ़ हो जाएंगे, इतने फुर्ती इतने चेयरफुल हो जाएंगे अगर ये डोज लेंगे। कौन सा डोज? जय लीला अमृत पाने, जय लीला वही लीला मध्य लीला, उस लीला को लेंगे तो समझ लेट नहीं हुआ ना। फास्टिंग तो कल पूरा हो चुका ना, फास्टिंग भी पूरा हो चुका होगा है ना, नहीं नहीं मुझे फिर दूसरी जगह जाना भी है आज। हाँ बोला ना, वो भी है उसके चैप्टर में उद्धार, प्रताप रुद्र उद्धार भी है, प्रश्न भी है आज। बोलिए बोलिए, आप बोलेंगे वो बोलेंगे, कौन बोलेगा?
छोटा सा जैसे आप महाराज आपने बताया कि श्री कृष्ण चैतन्य नाम जो है ज्यादा प्रोमिनेंट है और ज्यादा महिला ठाकुर ने बताया कि हम जो अल्टरनेट पूजा करते हैं गौड़ी ताई की गौरांग महापुर के रूप में जो नवदीप में है,
प्रश्न सबको समझ में आया ना। बोले प्रसिद्ध नाम तो श्री कृष्ण चैतन्य नाम, लेकिन हम अल्टर में नवदीप बिहारी की पूजा करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि वो पूजा करने के योग्य हैं, ये तो सन्यास ले लिए, सन्यासी को विष्णु बोलने से राम 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 राम, मैं तो भिखारी हूं सन्यासी हूं, वो पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन नाम स्वीकार करेंगे। फर्म ये है, नेम ओ है, ये है रूप, ओ है नाम। रूप में जो साक्षात भगवत विग्रह भगवत रूप में थे नदिया बिहारी, ये सुंदर चांचोर चिंकोर केस है, इतने सुंदर रूप है, इस पूजा के योग्य हैं। तो भक्त लोग जब भगवान के रूप में चेतन महाप्रभु संन्यास करे थोड़ी मानते, बोले हम जानते हैं तू तो झूठा सन्यासी है, मैं तो भगवान है, भगवान किसी लिए संन्यास लेंगे भाई? दूसरे लोग संन्यास धर्म करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो किसके लिए करेंगे? वो तो खुद ही है भगवान, तो वो तो मेकअप करके आए और क्या, इसलिए तो नित्यानंद तोड़ दी, बोली व्हाट इज दिस, ढोंगी कर रहा है, डंडा लेकर चलेगा। डंडा फाड़ फूट फेंक दी, बोली क्या, हाँ वो संन्यास ले निर्दंडी। हाँ? ना नाम था सन्यासी का, ना दंड धारण किए थे, कुछ नहीं था, ना काम था, सही प्रकाश था, इसलिए बोला तुम सन्यासी हो, हमारे परिवार वर्ग के सन्यासी हो, व्हाट यू आर डूइंग, नाचना गाना बड़े देश। सन्यासी का कर्म नमो नारायण आय ब्रह्म वेद जितना करो, निरिध्यासन करो, वेद पाठ करो, इसके ऊपर चिंतन करो, ये क्या कर रहा है? हाँ? जब से सन्यासी का जो कर्तव्य होता है ये ना करके ये क्या कर रहा है, डांस पार्टी लेकर घूम रहा है। ये लीला भी है उस बीच में, ऐसे बोले 10,000 सन्यासी बैठे थे, 10,000 सन्यासी ऐसे क्रिटिसाइज कर लेते हो, हमारा शर्म उठता है यार, तुम हमारे संप्रदाय के भारती से लिया तुमने, कैसे भारती से, और ऐसे कर रहा है यार, बदनाम हो रहा है। महाप्रभु जो आंसर जो रोल दिए बिचारे, ऐसे उत्तर दिए उसी स्टेज में उसी प्रोग्राम में 10,000 बाल कटवा दिए। दूसरे दिन तक वेट नहीं किए, वो नाई कितने मगे होंगे पता नहीं। उसी दिन न्यू ड्यूटी ज्वाइन कर ली सारे को सारे, थोक में होलसेल भक्त बनाए एक आध ऐसे नहीं। इतने महाप्रभु का टेक्निक इसे आप लाके है ना। तो इसलिए जब हम पूजा करते हैं अल्टर में जिस रूप को पूजा करना चाहिए वो है शिव विग्रह नवदीप बिहारी के रूप में, लेकिन नाम वो नाम है। ओके
गुरु कृष्ण महाराज, जैसे आपने बताया कि महाप्रभु जब यात्रा के लिए चले गए, अरबों लोग साथ में चले गए, बहुत हजारों लोग महाप्रभु के साथ चले गए, यात्रा का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, किसी चीज का नहीं किया, लेकिन जब शिवानंद सेन यहाँ से गोड़देश से जगन्नाथपुरी लेके आए, सब कुछ पूरी व्यवस्था करके रखी,
पूरा व्यवस्था होता था,
साथ की एक बार लेट हो गए,
लात मारे, गाली खाए, हाँ वो तो हम लोग का काम है, हम लोग की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो जाएंगे नहीं, क्यों जाएंगे तो पीटेंगे, गाली क्या देंगे, बोले क्या कर रहे थे विला करके, है ना। नहीं लेकिन यही तो अंतर है, भगवान राजा हुसैन शाह देख करके उनको आश्चर्य हो गया, उनको जब वो क्या करूंगा क्या करूंगा, इतने लोग घुस गए, कई उसको मैसेज मिलता, छुप खुद जाके छिप करके देखा, बाप रे बाप। सनातन गोस्वामी को बुलाकर पूछा, वो प्रधानमंत्री थे, बोले साकर मलिक आपका क्या ओपिनियन है, प्राइवेटली उनको पूछ रहे थे सनातन जी, साकर मलिक बोले आप तो राजा है, आप क्या सोच रहे हैं, न मैं क्या सोच रहा हूँ बोलू ना, बोलू ना, आप क्या सोच रहे हैं, ना सचमुच मैं सोच रहा हूँ, ये तो साक्षात जिंदा पीर है, साक्षात खुदा होगा ना, है ही, आप थोड़ी बोलते है ही, बहुत रियली आप भी बोलते ना, बोलता हूँ, जिनके वजह से आपको पोस्ट पोजिशन मिला है, तो सनातन मुझे क्यों आप विश्वास कर रहे हैं खुदा करके, बोले मैं इसीलिए विश्वास कर रहा हूं, प्रैक्टिकली मैंने तो कई साल से इलेक्शन जड़ कर जीता, तब इलेक्शन नहीं होता था तो फिर भी लोग मत लिया था, बोले मैं कभी वार्षिक उत्सव कराता हूं, एक साल से एडवर्टाइज कराता हूं, होर्डिंग बोर्डिंग लगाता हूं और डंडोरा बजाता हूं, अनाउंस करता हूं कि स्वयं नवाब हुसैन शाह आएंगे पधारेंगे, उनके प्रोग्राम होगा, सब आइए, सबको सूचना देता हूँ, प्लस ट्रक बस हाथी घोड़े ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता हूँ, जो जहाँ से आना चाहेंगे फोन करने से फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री अकोमोडेशन, फ्री प्रसाद, गिफ्ट भी साथ में जाते समय सारे व्यवस्था करता हूँ, पूरा ईयरली बजट खर्चा करता हूँ उनके पीछे, बड़े मुश्किल से एक साल प्रयास करने में 10,000 लोग आ जाए, वो ग्रांड सक्सेस, ग्रांड सक्सेस, 10,000 लोग इकट्ठा हुए साल भर प्रयास करके, बोले ये ना एडवर्टाइज किया है, ना किसी को बोला है, ना खाने का अरेंजमेंट, ना ठहरने का अरेंजमेंट, ना पीने का अरेंजमेंट, नथिंग, कुछ भी नहीं, किसी को देखता भी नहीं, पूछता नहीं, हो तो स्वयं हाथ उठाकर नाच कर जा रहा है, किसी को देखता भला हो, भाई आए ठीक है चलो साथ में, ऐसा भी नहीं कहता, बातचीत भी नहीं करता, स्वयं अपने हरे कृष्ण कर नाचते चला जा रहा है, वो उसके पीछे और बुद्ध संख्या में, अरे उनके लिए कोई बुकिंग नहीं, रात हो गया कहाँ रहेंगे, मैं देख रहा हूं गंगा के पानी में रारा, रात भर ऐसे खड़े आग बंद कर पानी में खड़े, कोई पेड़ में चढ़कर रात बिता रहा है, कोई पत्थर में, कोई घास में, कोई खेत में, पूरे रात, ना टॉयलेट है, ना बाथरूम है, ना नाना कुछ नहीं, फिर भी ना खाने की व्यवस्था, खाए पिए सोए भी ना, पागल उनके पीछे जा रहे हैं, तो 100% खुदा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ये महाशक्ति। सनातन बोले मैं क्या बताऊं, सब देख लिया, पता चल गया, और क्या, फिर क्या करना चाहो, क्या करना चाहो, पता नहीं क्या करना चाहिए, मैं अभी फिर करूं ना करूं, तुरंत हाईकमांड बुला करके नोटिस नोटिफिकेशन जारी किया, भाई ये जो सन्यास है कुछ भी मर्जी जो करे करने दो, नो ट्रबल, कोई डिस्टर्बेंस मत करे, नाचे गाए कहां जाए क्या करे, कोई कुछ नहीं करे, सारे पुलिस को ऑर्डर पास कर दिया, पुलिस लोग बोले राजा पागल हो गया, अरे ये तो हिंदू काफर है सन्यासी हरे कृष्ण नाम कर रहा है, मुस्लिम का राज्य मार वो फ्री कर दिया, बोले जो करने का कर दिया, डर के मारे बोले बाप रे बाप मेरा पोस्ट पोजिशन ना चलाना जाए, ऐसे क्या बोल लेता आपने, हाँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो भगवान है
इस बार हमारे जैसे परपोर्ट में तो मौजूद आ रहे कि अगर वो जो है हमारे द्वारा ट्रांसलेटेड बुक्स हैं अगर ये पढ़ेंगे नहीं जैसे चैतन्य चरितामृत है भागवतम है तो फिर ये खाएंगे सोएंगे और कमजोर पड़ते गिर जाएंगे। वहां अभी हम देखते हैं कि ना अभी जैसे ऐसे कलयुग की तरह भक्तों की रीडिंग कमजोर होती जा रही है और डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इसीलिए से देखते हैं कि भक्तों में वैसी गंभीरता नहीं आ पाती ना कथा में ना कथा पढ़ पाने में, तो पढ़ाई लिखाई में बहुत कम हो गई महाराज। और अब देखते हैं आपके तो इतना जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग महाराज, तो आप हमने टिप्स दिए कि ना यहाँ डिवोटीज की सबकी रीडिंग हमारी अच्छी हो जाए, हमारा पढ़ने लिखने में रुचि लगे, और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं स्पेशली मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस हैं या जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे कैसे बचे और पढ़ने लिखने हमारा मन लगे, हम क्या करें महाराज?
उसके लिए एक ही डोज है, सुनना पड़ेगा तब सब शुरू हो जाएगा, है ना? एक ही उपाय श्रवण से ही सब, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना, कब करना, किस प्रकार करना, सब पता चल जाएगा, है ना? दैट्स व्हाई मैंने सीरियसली अटेंटिवली क्लास अटेंड करें, सुने, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन केवल हम इसी काम को नहीं करते, बाकी सब सीरियसली करते हैं, प्रसाद के समय सीरियसली लेते हैं, सोने के समय सीरियसली सो जाते हैं, और बाकी सारे काम जो करते सीरियसली करते हैं, ओनली दिस के नहीं करते, तो इसलिए सब आगे पड़ जाते हैं, है ना? इसको प्रभुपाद जी ने जयलीला में पूरे उनके तीन बुक लिए, बोले मुझे अब तक ट्रांसलेशन किया हूँ, बोले मेरे भागवत भी इसी चैतन्य चरितामृत की अनुगत्य भागवत है, गीता भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुगत गीता है, और चैतन्य चेतन चैतन्य तो है ही है, तो इसलिए तीनों के नाम ले, बोले तीनों को पढ़ो, और भी जितने मैं किया हूँ सब, क्योंकि मैं महाप्रभु के ही पदान अंकन करके रूपानु हिसाब से कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको सब पढ़ना चाहिए। यहाँ तो डायरेक्ट प्यार में इसी को इंगित किया गया, ये इतने को जितने में बोला, उसी का प्रोजेक्शन, वही मध्य लीला का प्रोजेक्शन गीता में भागवत में प्रभुपाद जी सब जगह में किए, इसी के लिए बोले यही ड्रॉप इसी को सब डालें, उसी को फुट चढ़ाए। तो जब तक यही भगवत कथा, भगवत कथा में आगे प्यार शायद आगे पीछे आएगा, कृष्ण चैतन्य लीला अमृत के धार है, और कृष्ण लीला उसे कैंफर है, कर्पूर है, वो तो एडिशन है, असली मेन जो सब्सटेंस है वो चैतन्य लीला है, और उसमें कैंफर आदि डाल करके और थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए कृष्ण लीला है, है ना?
जैसे श्रवण तो जैसे सभी आए हुए सबके सब, और लेकिन स्पेशली जो है किताब को शेल्फ से निकालना, उसको खोलना और फिर उसको पढ़ना, ये क्रिया जो है उसमें सक्रियता नहीं आ पा रही, तो वैसे कैसे?
देखिए हमारे नवधा भक्ति में पठन है ही नहीं, ना तो पुस्तक भी था इतना, मुख्य जो भक्ति का अंग है श्रवण है, अगर ढंग से श्रवण करेंगे पढ़ने से हाइडोज हो जाएगा आपका, सारे प्रति उसी में हो जाएगा, लेकिन डेली श्रवण कर नहीं पा रहे हैं तो उसी समय में सब्सिडियरी श्रवण है रीडिंग, इज सेकेंडरी हियरिंग, हियरिंग इज मेन इंपॉर्टेंट अंग है, रीडिंग इज सेकेंडरी हियरिंग, हियरिंग अवेलेबल नहीं हुआ तो रीडिंग करो, कम से कम काम तो चलाए चलाना पड़ेगा, लेकिन सुनना चाहिए, उसके लिए किताब खरीदना नहीं पड़ेगा, पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा, खोलना भी नहीं पड़ेगा, चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए तो भगवान भी ओपन करके रखे हैं, ठीक नहीं लगाया, जाम नहीं किया, दोनों होल खुला है, खाली बैठो आकर के चुपचाप प्रसाद भी मिलेगा बाद में, वो भी गारंटेड है ना? नहीं इतने भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? इसलिए बोलते हैं यहाँ श्रवण है, केवल श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाएगा, जो उत्साह है उसी से प्राप्त हो जाएगा, जो जो करना है कर डालेंगे सब। और कुछ
महाराज, जब महाप्रभु के साथ केशव छत्री के साथ कुछ बातचीत हुआ था उनका,
ओ केशव छत्री के बाद हुसैन शाह का बातचीत हुआ, अब वो उसके बाद में फिर सनातन शब्द में जो प्रसंग बता रहा था ना वही था, केशव छत्री उनके भी एक सेक्रेटरी थे हुसैन शाह का, वो जो मीटिंग बुलाए थे क्या किया जाए, जे आए हैं इतने बड़े ग्रुप आ गया अंदर, ये तो आजकल दिल्ली में अगर 50-100 आदमी नाराबाजी करके चल जाए पूरा एसपी तक दौड़ कराएंगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपोर्टर सब आ जाएंगे, वो अगर अर्बुद संख्या में लोग, मतलब 2-5 लाख लोग आकीर्तन करके घुस जाए तो क्या होगा? बाप रे बाप, उसी दिन तो क्या हो जाएगा पता नहीं, हम सपने में सोच भी नहीं सकते। अगर दिल्ली में 5 लाख पब्लिक एक साथ में आ जाए कीर्तन करते हुए, और उनका भी कोई बुकिंग नहीं, कोई पंडाल नहीं, कुछ नहीं, हम लोग तो धारणा देने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए पहले पंडाल बनाते हैं और बैनर बनाते हैं, है ना? नहीं, हम स्ट्राइक करेंगे, अब साउंड सिस्टम लगाते हैं। वो महाप्रभु ऐसे कुछ था क्या? ना साउंड सिस्टम था, ना बैनर था, ना स्लोगन था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं। हम तो स्ट्राइक करने के लिए भी खाने का व्यवस्था करते हैं, जो लोग भाग लेंगे स्ट्राइक में उनको तो खिलाएंगे और बोलेंगे आमरण, क्या बोलते, अनशन, अनशन करेंगे, लेकिन आसन करेंगे लेकिन वहां तो सचमुच ऐसा था। तो केशव छत्री का साथ, तो एक केशव छत्री सोच रहा था कि मैं महाप्रभु का फर में बोल दूं, तो एक सन्यासी क्या है आप, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, आपको इतना सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि हुसैन शाह स्वयं जाकर देख रहा था, बोला गेट आउट, वरी नहीं हूं, मैं खुद देख रहा हूं, क्या हाल है, आप क्या बात कर रहा है, रंग रिपोर्ट। तो फिर मीटिंग कैंसिल करके सनातन को बुलाया, बोला उनसे पूछता हूँ, ये बहुत समझदार व्यक्ति, वही सही बताए। तो वो सही बताया आप क्या बोलते थे
महाराज? जैसे हम हियरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, ये कितना,
ये फोर्थ क्लास हियरिंग है है समझो यस क्या 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 पूछ रहे हैं श्रवण? यही है
जो लीडरशिप को और भक्ति शास्त्री को समथिंग के लिए भक्ति का अंग,
इसी के कराने के लिए, श्रवण कराने के लिए
है। अगर श्रवण ही कर रहा है और नाम जप रहा है तो श्रेष्ठ है, इसके लिए कुछ
नहीं, वही कराने के लिए सब जरूरी है। श्रवण और नाम कराने के लिए ये सारे व्यवस्था किया गया। मंदिर भी क्या जरूरत है, डीटीआरसी भी क्या जरूरत है, आरती करना क्या जरूरत है, झाड़ू पोछा लगाना क्या जरूरत है, लेकिन क्लास कैसे होगा, है ना? इसलिए इसी के लिए ये सब सब्सिडियरी एक्टिविटीज है। ओके बोलिए। ये प्रायोरिटी के तीन शब्द इधर देखा गया, जब उत्फुल्लित हो जाएंगे तन और मन, जब प्रसन्न हो जाएगा क्या काम करेगा, हाथ से गाए और नाचे, है ना? प्रसाद खा कर तो बोला ना हॉस्पिटल जाते हैं हंसते हैं, ये होना चाहिए, प्रायोरिटी यही है। हाँ, लेकिन ये प्रसाद क्या है, सलीला अमृत विने, ये प्रसाद भी देखो निर्जला फास्टिंग था, वो लोग जरूर फास्टिंग निर्जला किए होंगे, और जेठ के महीना में निर्जला व्रत आता है ना, नहीं जेठ के महीना में निर्जला व्रत, खूब नित्य कीर्तन पसीना निभाए, वो कुछ नहीं खाए, पानी तक नहीं पिए, दूसरे दिन कितने भूख लगा होगा, लेकिन फीस्ट का मेनू क्या था मालूम है, दूसरे दिन चिड़ा और दही, आग नहीं जलाना पड़ेगा, गैस चूल्हा जरूरत नहीं, सब्जी कटना जरूरत नहीं, मार्केट नहीं करना आवश्यकता नहीं, नित्यानंद प्रभु का मेनू था ये। आप लोग ऐसे मेनू अनाउंस करके लगा दे बोर्ड में, आज फीस्ट यही होगा मेनू, फिर इसमें कोई क्राउड कंट्रोल का जरूरत नहीं, आएंगे नहीं, घर में खा लेंगे, हम घर में खा लेंगे हजरे। आप बोलेंगे महाफिस्ट है, दिस इज द मेनू। फिर देखा कितने आएंगे प्रसाद में, कोई बिछाना नहीं पड़ेगा, आधे किलो चूड़ा में काम बन जाएगा, है ना। नहीं ये चैतन्य चरितामृत का मेनू है ना। नहीं
हमारा एक और प्रॉब्लम ये भी है ना कि हाथ से गाय नृत्य नहीं करते और प्रसाद पाते हैं, तो प्रसाद हाँ हाथ से गाय करेंगे प्रसाद,
नहीं ये प्रसाद खा कर वो हाथ से गाय करेंगे नहीं तो मेडिकल जाएंगे। जो प्रसाद खाने से हंसे गाएंगे नहीं उतेंगे, प्रसाद खाए नहीं। यही मैं बोलता हूँ, जो प्रसाद खाते हैं तो प्रसाद तो दूसरे काम के लिए, धनहानि प्राण पीड़ा के लिए, ये तन मन प्रसन्न करने के लिए जो प्रसाद चाहिए वो ये नहीं। हरे कृष्ण हिताय गौर हरि प्रेमानंदे।
श्री चैतन्य चरितामृत की
जय।
रूपाधि की
जय।
बोलने भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की
जय।